الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم آپ کے سامنے ایک بڑے اہم موضوع پر گفتگو کریں گے اور اس کا عنوان ہے گھر کے برباد کرنے میں عورت کا کردار. عنوان سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ موضوع کیا ہے اور اس میں کیا کچھ بیان کیا جائے گا. دیکھیے ساس اور بہو کا جھگڑا جو ہے یہ عرصے دراز سے یہ چلا رہا اور مختلف خاندانوں میں ہم یہ جھگڑے سنتے رہتے ہیں دیکھتے بھی رہتے ہیں. آج ہم اس پر یہ گفتگو کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں اور پھر اس کا علاج کیا ہے, کیونکہ معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ پھیل چکی ہے اور آئے دن ہمارے پاس یہ جھگڑے آتے ہیں اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ عورت کی ہی وجہ سے عورت کا گھر برباد ہوتا ہے, بچوں کی زندگیاں برباد ہوتی ہیں اور جو وہ لڑکا ہے جو شوہر ہے اس عورت کا اس کی زندگی برباد ہوتی ہے. لیکن کسی کو اس سلسلے میں کوئی دھیان نہیں, کوئی خیال نہیں کہ کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے. بہرحال ایک مسئلہ یہ ہے اور اس کا حل اسباب یہ ہم پیش کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل کو بات لگ جائے اور کوئی عمل کر لے تو بہت سوں کے گھر برباد ہونے سے بچ جائیں. ساس اور بہو کا جھگڑا یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے اور آپ مختلف خاندانوں میں, علاقوں میں, قبائل میں آپ دیکھتے رہتے ہیں اور روزمرہ کے معاملات میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. اس کے اسباب کیا ہیں؟ سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہر ساس اپنی بہو کو بیٹی کی طرح سمجھے اور ہر بہو اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھے تو آدھے سے زیادہ جھگڑے, بلکہ مکمل جھگڑے ختم ہو جائیں. کیونکہ آپ دیکھیں نا, اگر ساس بہو کو بیٹی کی جگہ سمجھے گی تو جس طرح بیٹی کی غلطیوں کو نظر انداز کرتی ہے اس کی بھی غلطیوں کو نظر انداز کر دے گی, جس طرح بیٹی کی تربیت کرتی ہے اس کی بھی تربیت کرے گی, اس کو پیار سے محبت سے سمجھائے گی, ڈانٹے گی نہیں. اور اگر بہو ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھے تو جس طرح وہ ماں کا ادب کرتی ہے, احترام کرتی ہے, اس کی ڈانٹ کو بھی برداشت کر لیتی ہے اور اس کے حکم کو بھی نہیں ٹالتی, اگر یہی چیز وہ ساس کے ساتھ کرے تو اس کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہوگی اور ساس کرے تو اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی. مین وجہ تو یہ ہے. اب آئیے دوسری وجہ جو ہم نے غور کیا. دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کسی ساس پر ابتدا میں, یعنی جب وہ بہو تھی, اس پر ظلم ہوا, اس کی ساس نے اس پر سختی کی, مظالم کیے, جو بھی کچھ اس کے ساتھ کیا, تو ساس بننے کے بعد وہ اسی تاریخ کو دوبارہ دہرانا چاہتی اور سوچتی ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ اس کے ساتھ بھی ہو. میں نے جب اتنی مشکل میں زندگی گزاری, اس طرح میں نے کیا, اس طرح دن رات کام کیا, اب اس کو کیوں نوکرانی مل گئی, یہ آرام سے کام سے الگ بیٹھی ہے اور نوکرانی کام کر رہی ہے, یہ آرام کر رہی ہے. جب میں سارا دن کام کرتی تھی, بھائی وہ وقت الگ تھا, یہ وقت الگ ہے, ماحول کا فرق ہوتا ہے, وقت کا فرق ہوتا ہے اور معاشی معاملات کا فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب اس کی شادی ہوئی ہو تو اس کے شوہر کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں کہ وہ کوئی نوکرانی رکھ سکے, اور اب اس کے بیٹے کی شادی ہوئی تو اس کے پاس اتنے وسائل ہیں, لیکن یہ اسی تاریخ کو دہرانا چاہتی ہے کہ کوئی نوکرانی نہیں رکھنی, کچھ نہیں کرنا ہے, اسی کو کام کرنا ہے. کیا ہے وہ بیمار ہو, کیا ہے وہ پریشان ہو, کیا ہے وہ ذہنی اذیت میں ہو, کیسی حالت ہو, نہیں اس کو کام کرنا, تو اسی تاریخ کو دہرایا جاتا ہے. اگر ٹھنڈے دل سے سوچا جائے کہ وقت بدل گیا ہے, معاشرے کی قدریں بدل گئی ہیں, حالات بدل گئے ہیں, اگر آپ نے زندگی اس طرح گزاری تو آپ دوسرے کی زندگی کو کیوں اجیرن بنانا چاہتی, دوسرے پر کیوں سختی کرنا چاہتی. یہ دوسری وجہ. تیسری وجہ کہ جب بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو ظاہر ہے اس کی محبت دو جگہ بڑھ جاتی. پہلے وہ آفس سے آتا تھا تو سیدھی ماں کے پاس جاتا تھا, सलाम करता था या जो भी उसके साथ बैठता था, चाय पीता था, खाना खाता, जो भी। लेकिन अब शादी हो गई तो जाहिर है उसको बीवी के पास भी जाना है, उसको भी वक्त देना है। ये चीज़ जो है ये सास से बर्दाश्त नहीं होती और वो सोचती है कि इसने मेरे बेटे को छीन लिया। अब इसमें अगर बेटा समझदार हो तो वो फिर दोनों को बैलेंस करके चलता है, माँ के पास भी वक्त और बीवी के पास भी वक्त। अच्छा, साथ ये करती है कि क्योंकि उसकी गैर मौजूदगी में सिर्फ ये दोनों ही हैं तो उसके आने के बाद झूठी सच्ची बातें अपने बेटे को लगाती है, उसको बताती है इसने ये किया, इसने ये किया, उसने ये किया। अगर वो कच्चे कानों का है यानी समझदार नहीं है, कोई उसने तस्दीक नहीं की, वो सीधी माँ की बात सुनकर आते ही बीवी पर बरस पड़ता, उस पर जुल्म सितम भी करता है, मारपीट भी करता है। इधर वो मारपीट करता है, उधर सास के दिल को सुकून मिल जाता है। और बाद औकात यहाँ तक होता है कि वो कहती इसको जाओ मैं के छोड़ के आ जाओ, और वो छोड़कर आ जाता है। इतना यानी वो बेअकल होता है और माँ के कहने में इतना ज़्यादा फर्माबरदार होता है कि माँ के हुक्म के आगे बीवी के हकूक़ को सब को फरामोश कर देता। हालांकि उस पर माँ का भी हक है, उस पर बीवी का भी हक है, और माँ को भी चाहिए कि जब उसकी शादी हो गई तो उसको थोड़ा सा रिलीफ दे और ये सोचे कि इसको अब बीवी को भी वक्त देना है, उसका हक है इसके ऊपर, शरई तौर पर भी हक है, लेकिन ये कोई नहीं सोचता। अच्छा, इसका सबसे ख़तरनाक पहलू जो है वो ये है कि अगर औलाद नहीं है और इसने माँ के कहने में आकर बीवी को छोड़ दिया तो बात तो गलत है लेकिन अभी औलाद नहीं है। ऐसी सूरत हाल भी हमारे सामने आई और ऐसे केस अभी भी हमारे सामने हैं, यानी ये सुनी सुनाई बात मैं नहीं कर रहा, ये मुशाहिदे की बात, कि दो या तीन बच्चे हो गए और माँ ने कहा इसको घर छोड़ाओ, मैं नहीं चाहती कि ये यहाँ पर रहे, और उसने मारपीट की और छोड़ दिया। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि बच्चों को रख लिया, माँ को छोड़ दिया। अब आप गौर कर सकते हैं कि माँ की बच्चों के साथ अटैचमेंट, उसकी मोहब्बत, उसकी ममता, उसकी तड़प कितनी ज़्यादा होती, माँ कितनी ज़्यादा बच्चे से मोहब्बत करती। और मुझे हैरत हुई कि एक केस मेरे पास आया कि 1.5 साल का बच्चा वो उसकी सास ने छीन लिया और शौहर ने भी कुछ नहीं कहा और कहा कि इसको घर से निकाल दो, वो तुम्हारी बीवी है और वो तुम्हारी बच्चों की माँ है, उसने अपने खून से उसकी परवरिश की, अपने दूध पिला के उसकी परवरिश की, 1.5 साल का बच्चा, उसकी क्या उम्र होगी, क्या उसको माँ की ज़रूरत नहीं। लेकिन वो औरत अपने अना के खातिर कि इसको अजियत देनी, इसको तकलीफ़ देनी, इसको छोड़ के आ जाओ, और वो साहब बहादुर माँ के इतने फर्माबरदार हैं कि जो माँ ने कहा फ़ौरन जाकर छोड़कर आ गए, ये नहीं सोचा कि उस बच्चे की तरबियत कौन करेगा। क्या सास माँ की जगह हो सकती, बल्कि सास क्या कोई भी दुनिया की औरत माँ का मकाम, माँ की जगह कभी नहीं ले सकती, ये सब जानते हैं, ये एक फैक्ट है, एक हकीकत। माँ जितनी मोहब्बत करती है कोई नहीं कर सकता, कोई कितनी ही मोहब्बत जताए नहीं मैं इसको पाल लूँगी, मैं मोहब्बत कर लूँगी, सब झूठ है, सब मकर है, फरेब है, धोखा है। माँ की तरह कोई मोहब्बत बच्चे से नहीं कर सकती। और ये मुशाहिदे की बात है, मुझे अफसोस हुआ जब ये बात मेरे इल्म में आई कि 1.5 साल का बच्चा उस जालिम औरत ने उस बहू से छीन लिया, अब खुद उसकी परवरिश कर रही कि इसको मैं तड़पाऊँगी, और दूसरे जो दो बच्चे 4 साल और 3 साल की उम्रों के या 2 साल की उम्रों के उनको छीन, दिल को तस्कीन पहुंच रही है कि मेरी जो बहू है उसको अजियत हो रही, और वहां यह है कि वह गरीबी है, कोई उनके घर में ऐसा नहीं कि जो जाके बात करे, और ये बिल्कुल फिरौन बेसामा बनकर, और शौहर जो हैं वो बड़े नेक मुत्तकी परहेजगार, नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हाफिज कुरान भी हैं, कुरान भी सुना रहे हैं, और साथ में बीवी पर यह जुल्म भी हो रहा। क्या ये नमाजें उनके काम आएंगी, क्या ये कुरान सुनाना उनके काम आएगा, क्या ये जुल्म व सितम जो सास कर रही है ये कयामत में इससे सवाल नहीं होगा, कयामत तो दूर की बात है, दुनिया ही में अल्लाह तबारक व ताला दिखा देता है, मकाफात अमल है। आपने एक माँ से उसका बच्चा छीन लिया, उसकी ममता को तड़पाया, आपने उसके दिल को अजियत दी, तो आप ज़रा सा गौर करें, क्या अल्लाह तबारक व ताला इंसाफ नहीं करें। एक बुजुर्ग से किसी ने कहा मुझे नसीहत कीजिए, कहा नहीं तुम्हें नसीहत की ज़रूरत नहीं, कहा नहीं हुजूर मुझे नसीहत कीजिए। अच्छा, अगर तुम वाकई चाहते हो कि तुम्हें नसीहत की जाए तो बताओ अमल करोगे, क्या जी हुजूर जो कुछ आप कहेंगे मैं बिल्कुल पूरी तरह इस्तकामत के साथ इस पर अमल करूँ। अब सुनिए उन्होंने क्या फरमाया, बस इस बात का ख्याल रखो कि कोई भी तुम्हारी शिकायत अल्लाह से ना करे। गौर कीजिए कितना बड़ा जुमला है और कितनी बड़ी बात है अगर आप इसकी गहराई में जाएं। इस बात का ख्याल रखो कि कोई भी तुम्हारी शिकायत अल्लाह की बारगाह में ना करे। मतलब क्या है? तुमसे कोई अमल ऐसा सरजद ना हो कि किसी का दिल दुख जाए, किसी की दिल आजारी हो, किसी की बेइज्जती हो, किसी की इज्जत नफ्स मजरू हो, किसी के हुकूक पामाल हो, कोई भी ऐसा अमल ना हो। जाहिर है ऐसा अमल होगा तभी तो वो शिकायत करेगा। और शिकायत कौन करता है? मजलूम, बेसहारा, जिसका कोई सहारा नहीं होता, उसको पता है कि मुझे कोई भी हक दिलाने वाला नहीं है, जुल्म हो रहा है, तो फिर उसकी आह जो है सीधी अल्लाह की तरफ, आसमान की तरफ जाती। और वो आह जो दिल से निकलती है बद्दुआ की सूरत में, उसी वक्त खालिक कायनात की बारगाह में पहुंचती है। और फिर वो जो इंतकाम लेता है, तो फिर उसके इंतकाम से, उसके गजब से दुनिया की कोई ताकत बचाने वाली नहीं है। और ऐसी चीजें हमारे मुशाहदे में हैं कि अगर किसी औरत ने किसी औरत पर जुल्म किया, क्या है वो बहू हो या कोई भी हो, तो क्या हुआ? मरते वक्त जान अटक गई, जाकनी के वक्त, नजा के वक्त, कितने वाकयात ऐसे हमारे सामने हैं। मकाफात अमल दुनिया में, डॉक्टरों ने कहा इस पर हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह का मामला है, हकीमों ने कह दिया, बड़े बड़े लोगों ने कह दिया, बड़े बड़े बुजुर्गों ने कह दिया, इससे किसी पर जुल्म हुआ है, लिहाजा इसका मामला तो सिर्फ अल्लाह के बारगाह में है। अगर ये माफी मांग ले, अल्लाह ताला माफ कर दे, तो फिर हो सकता है। और हकीकत है कि जब उसका गजब नाजिल होता है और उसकी पकड़ होती है, तो कोई भी बचाने वाला नहीं है, ना कोई वली बचा सकता है, ना डॉक्टर, ना हकीम, कोई उसका इलाज भी नहीं कर सकता, कोई उसको अल्लाह के गजब से बचाने वाला नहीं। फिर क्या हुआ? अल्लाह के एक वली ने कहा अगर तुम लोग जानते हो कि इससे किसी पर जुल्म हुआ है, क्योंकि वो तो ऐसी कैफियत में थी कि उसकी जान अटक गई थी, ना वो बोल सकती थी, ना हिल सकती थी, लेकिन तड़प रही है, जान भी नहीं निकल रही, जान अटक गई हलक में, आप देखें कितनी सख्त अजियत है। तो उन्होंने कहा अगर तुम जानते हो तो जाकर उसको लाओ, वो इसको माफ कर दे, इसकी जान निकल जाएगी। तो लोगों ने कहा दूर क्यों जाते हो, इसने तो अपनी बहू पर जुल्म किया था, उसको ले आओ। सब जानते थे और किसी की बात उसने नहीं मानी थी, ना शौहर की मानी, ना किसी की मानी, खानदान के बड़ों बड़ों को जलील करके निकाल दिया और बहू पर वही जुल्म, सितम, ज्यादती करती रही। उसको लेकर आए, उसने आकर कहा कि मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया, आप यकीन करें कि उसी वक्त उसकी रूह परवाज़ कर गई। ये है अल्लाह ताला की पकड़। तो यह हम इसलिए बता रहे हैं कि सुनी सुनाई बात नहीं है, यह मुशाहिदे की बात है। अगर कोई औरत इस तरह ऐसा जुल्म कर रही है, उसे चाहिए अल्लाह के गजब से डरे। वो ये सोचती है कि नहीं, बेटा मेरे हक में है, शौहर मेरे हक में है, सारे खानदान मेरे हक में है, मैं जो चाहूं कर सकती हूं, मैं जिस तरह चाहूं इसको अजियत दूं। 1.5 साल का बच्चा उससे छीन कर खुद पाल रही है, 4 साल 5 साल के बच्चे छीन कर खुद पाल रही है, माँ को तड़पा दिया, 6 महीने गुजर गए, साल गुजर गए, बच्चों की शक्ल उसने नहीं देखी। गौर करो, तुम्हारा बेटा जो जवान है, अगर वो तुमसे छीन जाए तब क्या होगा? तुमने जो 1.5 साल का बच्चा छीना, अगर जवान बेटा तुमसे छिन जाए। और खालिक कायनात बाज दफ़ा ऐसा इंतकाम लेता है कि वो फिर बिल्कुल ही छीन लेता है, दुनिया से ही उठा लेता है, फिर क्या करो? इसलिए हमने इस मौजू को इसलिए अपना उनवान सुखन बनाया, गुफ्तगू का मौजू इसलिए बनाया कि ये माशरे में आजकल ये चीज़ हो रही है। और आप देखें कि 3 जिंदगियां बर्बाद होती हैं, 3, मर्द की जिंदगी, औरत की जिंदगी और बच्चों की जिंदगी। सबसे ज्यादा असर बच्चों की जिंदगी पर पड़ता। लड़का जो है वो शादी कर लेगा, लड़की की शादी में मसला होता है, लोग कहते नहीं बच्चे हम शादी नहीं कर रहे। अगर बिलफर्ज आप ये सोचें कि उसने शादी कर भी ली, किसी तरह उसकी शादी हो गई, बच्चों का क्या होगा? जो दूसरा शौहर है बच्चों को रखने में तैयार नहीं, और अगर रख लिया तो सौतेला बाप है, जुल्म सितम कर रहा है, बच्चों को बाप का प्यार नहीं मिला, तरबियत में कमी रह गई, तरबियत में कमी रह गई तो वो बागी हो गए, माशरे से उन्होंने बगावत कर दी, कितने मसले पैदा हो गए। सिर्फ एक औरत की अना ने 3 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया। इसलिए सोचिए, गौर करें, समझें, وہ عورتیں اگر سن رہی ہیں تو وہ سوچیں, غور کریں, اللہ کے غضب سے ڈریں اور یہ سوچیں کہ کوئی تمہاری شکایت اللہ سے نہ کرے. اس لیے, اور خاص طور پر ایک اور بات میرے ذہن میں آئی اور وہ یہ ہے, بات کہنی تو نہیں چاہیے لیکن یہ کہ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ بات, اس قسم کے دو یا تین کیس ہمارے سامنے آئے, اور وہ بات یہ ہے کہ اگر کسی کا ایک بیٹا ہو تو اسے چاہیے کہ اس کی شادی نہ کرے. اب آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی, کیا آپ نے فتویٰ دے دیا کہ ایک بیٹا ہو شادی نہ کریں, کیوں نہ کریں؟ دیکھیے, بات کہنی تو نہیں چاہیے لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایسے دو یا تین کیس میرے سامنے آئے, لڑکیاں ڈھونڈ رہی کہ نہیں یہ لڑکی چلا گئی ہے, مجھ سے میرے بیٹے کو چھین لے گی, یہ ذرا ہوشیار لگتی ہے یہ چھین لے گی. کتنے رشتے دیکھے اور کینسل کر دیے, وہ بیچارہ بیٹھا ہوا, اس کی عمر گزر رہی, اور اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں بھی نقصانات ہوتے ہیں. جب اس کی وقت پر شادی نہیں ہوئی, عمر نکل گئی, بعد میں کوئی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں, صرف ماں کی وجہ سے, اور اگر ملی تو پھر ایسے ہی ملی. اور یا پھر یہ ہوا کہ اگر اس کی شادی ہوئی تو پھر ماں نے کہا یہ تو میرے بیٹے کو چھین لے گی, وہ الٹی سیدھی باتیں اس کی طرف سے لگا کر اس کو پٹواتی ہے, اس پر ظلم کراتی ہے, یا اس کو میکے بٹھا دیا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی اس کی داد رسی فریاد رسی سننے والا نہیں ہے. یہ سب ایک عورت کی وجہ سے ہو رہا. اگر تمام عورتیں خصوصاً جو ساس ہیں اپنی بہوؤں کو اپنی بیٹی کی جگہ سمجھیں, اور جتنی بھی بہوئیں ہیں اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھیں, ماں ڈانٹتی ہے نا, برداشت کرتے ہیں, ساس کی بھی برداشت کر لیں. اگر کوئی وہ ایسا حکم دے رہی کہ جو آپ نہیں چاہتے لیکن آپ کر لیں تاکہ اس کی حکم عضولی نہ ہو اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا حکم ٹھکرایا گیا, بہت ساری چیزیں ہیں. اور ساس کو چاہیے کہ وہ اگر دیکھتی ہے کہ یہ وقت بیوی کے ساتھ گزار رہا ہے اور اس کی طرف سے اس کو غلط بات لگاتی ہے تو آپ بیٹھ کر صلح کر لیں, بیچ میں بیٹھ کر بات کر لیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے. لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں کہ اس سے معاشرے میں جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے, اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں اکثر مردوں نے بیویوں کو طلاق دے دی جن کے دو یا تین بچے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے, صرف ماں کی وجہ سے. اب غور کریں, صرف ماں کی, اس کی انا کہ میں اس کو نہیں بسنے دوں, اس گھر میں یہ نہیں آ سکتی. تو سوچنے کی بات ہے, جب نہیں آ سکتی تو آپ لے کر کیوں آئے؟ بھائی آپ کو اگر بیٹے کو سینے سے لگا کے رکھنا تھا تو اس کی شادی کیوں کی تھی؟ اور شادی کی ہے تو ظاہر ہے وہ حقوق ادا کرے گا بیوی کے, اس کی محبت بٹے گی, ماں کی محبت اپنی جگہ ہے, بیوی کی محبت اپنی جگہ. اگر اس نے بیوی پر خرچ کر دیا تو ماں ناراض ہے, اگر اس کو گھمانے کے لیے لے گیا تو ماں ناراض ہے, اگر اس کو کپڑے دلوا دیے تو ماں ناراض ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سوچنا چاہیے, غور کرنا چاہیے, اس پر جو جو حقوق ہیں وہ حق اسے ملنے چاہیے, اور اگر آپ اس کے حقوق ملنے میں رکاوٹ بنیں گی تو قیامت میں جواب دہ ہوں گی, اور قیامت تو دور کی بات ہے, اسی دنیا میں مکافات عمل ہوگا. اور بہت سی جگہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ جن عورتوں نے اپنی بہوؤں کے ساتھ یہ کیا ان کی بیٹیوں کے ساتھ بھی یہی ہوا, وہاں بھی یہی ہو رہا. پھر چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, ہم نے کیوں کون سا گناہ کیا, ہم نے کون سی خطا کی. ذرا سا اپنے اوپر غور کرو, اپنا محاسبہ کرو, دیکھو تم کیا کر رہی, جیسا کرو گی ویسا پھل. اگر نیک عمل تو پھر اس کی جزا, اور اگر برا عمل تو اس کی سزا. تو بعض اوقات تو اسی دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دکھا دیتا ہے, اسی کو کہتے مکافات عمل, یہیں پر ہی سب کچھ نظر آ جاتا ہے. لیکن افسوس, ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب, اس کے انتقام, اس کی پکڑ, ان نبت یا ربی کا لشدید, قرآن کہتا ہے تمہارے رب کی پکڑ بہت سخت ہے, اگر وہ پکڑ لے تو دنیا کی کوئی طاقت چھڑا نہیں سکتی, اور جس کی رہائی اس کی طرف سے ہو جائے اسے پھر کوئی پکڑ نہیں سکتا, کوئی اسے سزا نہیں دے سکتا. تو اس کے جو اسباب ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیے, اور اس کا جو حل ہے, سب سے پہلا حل تو یہی ہے جو ہم نے ابتدا میں ذکر کیا کہ ہر ساس بہو کو اپنی بیٹی کی طرح سمجھے اور اسی کی طرح اس کی تربیت کرے, اس کے ساتھ رہے, اور ہر بہو اپنی ساس کو ماں کی طرح سمجھے, ماں کا درجہ دے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی شوہر کی ماں کو باپ کو گالیاں دے تو ادھر شوہر بھی اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتے, وہ تو دونوں طرح ہیں. अगर आप चाहते हैं आपके वालदैन की इज्जत की जाए तो आप भी इज्जत करें। शौहर चाहता है मेरे माँ बाप की इज्जत की जाए लेकिन बीवी के माँ बाप को गालियाँ दे रहा है तो कैसे होगा? आप उनके माँ बाप की इज्जत करें, वह आपके माँ बाप की इज्जत करें। आप उनका एहतराम करें, वह आपका एहतराम करें। वो भी माँ बाप के बराबर है, सास ससुर जो हैं ये भी माँ बाप के बराबर है। और ऐसी सूरत हाल में जहाँ पर जिन खानदानों में ऐसा है कि उन औरतों ने अपनी बहुओं को बसने नहीं दिया, ख़ानदान के बड़ों को चाहिए कि वो बैठकर उनको समझाएं, उनको खुदा का खौफ दिलाएं, और अगर वो मैके में बैठी हैं तो उनको घर पहुंचा दें। और ऐसी औरतों के लिए हमारा मशवरा ये है कि वो अपने बच्चों की शादी ही ना करें, अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करें, उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करें, और तीसरी की भी, यानी जो बहू है उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद करें, और अगर बच्चे हो गए तो फिर उनकी भी ज़िंदगी बर्बाद। और आप याद रखें कि माशरे में जो बेराहरवी फैल रही है, बच्चों को बाप का प्यार नहीं मिलता या बच्चों को माँ का प्यार नहीं मिलता, तो वो खुदसर हो जाते, ज़िद्दी हो जाते, फिर वो तालीम की तरफ तवज्जो नहीं देते, और अगर तालीम हासिल नहीं करते तो फिर उल्टे सीधे काम वो करते हैं। आजकल तो मोबाइल है जिसमें सारे खुराफात मौजूद हैं, उसमें अगर लग गए या किसी और गलत सोसाइटी में पड़ गए तो वो फिर माशरे के लिए नासूर बन जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि उन बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए और उस औरत की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए अभी से हम कोशिश करें, और ये खुसूसन वो औरतें कोशिश करें जिनके बच्चों की शादियां हुई हैं, जो सासें बन गई हैं, कि तवाज़ुन कायम रखें, अदम तवाज़ुन का शिकार ना होने दें। शौहर को चाहिए, माँ की मोहब्बत, बीवी की मोहब्बत, दोनों की मोहब्बत है, जाहिर है, ना इसको आप छोड़ सकते हैं ना उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन तवाज़ुन बरकरार। और ऐसी सूरत हाल में ये ना हो कि एक को छोड़कर आप दूसरे की तरफ चले जाएं, माँ बाप को छोड़ दिया और बीवी को लेकर अलग घर में चले गए कि हम तो सुकून से हैं, उधर माँ आपके लिए तड़प रही है, ये भी गलत है। और माँ अगर चाहे कि बीवी को छोड़ दे मेरे पास आ जाए तो ये भी गलत है। इसलिए अदम तवाज़ुन का शिकार जब भी कोई होगा, ये खराबी पैदा होगी, ये बुराई पैदा होगी, ये मसाइल पैदा होंगे। तो इस मसले पर बड़े गौर और फिक्र करने की ज़रूरत है, औरतों को भी मर्दों को भी, और जो ख़ानदान के बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, जिन ख़ानदानों में जमातें हैं, उनको चाहिए कि इन मसाइल पर ख़ास तौर पर गौर करें। और अगर कोई खुदसर औरत ऐसी है जो किसी की बात नहीं मानती तो उसका बिल्कुल बायकॉट किया जाए, उससे मिलना जुलना, रहना सहना, बातचीत करना, हर किस्म का बायकॉट किया जाए और मना कर दिया जाए कि इस औरत से ना मिला जाए, और उसके बेटे के घर को, उसके बहू के घर को बसाया जाए। कितने केस ऐसे हमारे पास हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, अपनी अना को, अपनी ईगो को ख़त्म करने की तौफीक अता फरमाए, और दूसरों के लिए राहत, खुशी, आराम, ये तमाम चीज़ें देने की तौफीक अता फरमाए, कि हमारी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे, किसी की दिल आज़ारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी को परेशानी ना हो, सबको आराम और सुकून हो, ताकि कोई हमारी शिकायत अल्लाह से ना करे बल्कि उसकी दुआएं हमारे लिए हों। जब अल्लाह की बारगाह में उसकी दुआएं हमारे लिए होंगी तो फिर आप देखें खालिक कायनात कितनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शरीयत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस्तेकामत के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।